तो आप सभी का स्वागत है दूसरे सत्र में। आज हम कल के विषय से आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने क्या क्या देखा, एक बार उसको पुनरावृत्ति करें। पहले हमने देखा कि भगवद गीता किस प्रकार से ये जो कोर्स है हमको सहायता करने वाला है। हमने इस विषय में एक उदाहरण देखा कि जैसे एक व्यक्ति सपना देख रहा है तो और सपने में बहुत कष्ट भुगत रहा है, तो उसके सभी कष्टों का उपाय है कि वो सपने से बाहर आए। तो उसी प्रकार से हम जो भी समस्याएं झेल रहे हैं उसका कारण है शरीर। जितने भी कष्ट हैं वो शरीर के कारण उत्पन्न होते हैं। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंताएं, ये सब शरीर की वजह से हैं। शरीर के अंदर मन भी आ गया, मन भी शरीर का ही अंग है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो इस प्रकार से ये शरीर के कारण अनेक कष्ट हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हम मिथ्यावश अपने को शरीर मान रहे हैं। तो ये एक सपना है जो हम देख रहे हैं कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, और इसलिए जो शरीर को होता है वो सोचते हैं कि वो मेरे को हो रहा है, वो कष्ट मुझे हो रहे हैं। और मात्र ऐसा नहीं है कि समझ लेने से, एक बार सुन लेने से कि ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये सुन लेने के बाद से फिर अभी शरीर के दुख हमको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो शरीर और आत्मा के बीच में जो जोड़ है वो बहुत कड़ा है, मजबूत है। इसलिए उसके लिए प्रोसेस है उसको अलग करने के लिए। जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया है, नारियल होता है कोपरा, तो जब वो कच्चा होता है तो जो उसके अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है वो बिल्कुल उसके खोल से चिपका होता है। आप खोल को तोड़ेंगे तो साथ में वो भी टूटेगा, लेकिन जब नारियल पक जाता है तो वो बिल्कुल अंदर से अलग हो जाता है। ऐसे आप उसे हिलाएंगे तो अंदर आवाज़ आए, हिलेगा वो, तो अभी बिल्कुल अलग हो गया। अभी आप उसको तोड़ेंगे ऊपर के खोल को तो अंदर से वो जो नारियल है वो एज इट इज़ निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम शरीर के साथ जो अपने को संबंध बनाए हुए हैं, सोचे हुए हैं, वो बहुत जबड़ कड़ा है। हाँ, लेकिन आत्म साक्षात्कार से कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति आने पर फिर शरीर के दुख, शरीर मरेगा, बूढ़ा होगा तो भी हमको उससे कष्ट नहीं होगा, वो आत्म साक्षात्कार का तरीका है। तो ये हमने देखा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इस विषय में हमने कुछ उदाहरण देखे कि कैसे कोई व्यक्ति मरता है तो हम समझते हैं तुरंत कि हाँ वो व्यक्ति चला गया। फिर हमने देखा कि हम ही इसी जीवन में भी बच्चे का शरीर था हमारा, वो मर गया, जवानी का शरीर मर गया, अभी बुढ़ापे का शरीर आया है, तो वो सब शरीर मरने पर भी हम तो नहीं मरे, इसका मतलब हम शरीर से अलग हैं, इस तरह से हमने समझा। फिर हमने देखा कि ठीक है, शास्त्र में बताया गया है कि हम अपने को स्टडी करके भगवान को स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम अपने को स्टडी कैसे करें कि ये शरीर एक मशीन है और इस मशीन को चलाने वाला आत्मा है, तो उसी प्रकार से फिर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो वो भी बड़ी मशीन है, तो उस ब्रह्मांड को चलाने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम परमात्मा या भगवान कहते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे हम पूरी तरीके से उस भगवान के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, हर चीज, प्रकृति के नियम भी उनके द्वारा बनाए हुए हैं और आत्मा भी उनके द्वारा नियंत्रित है, हर चीज वो परम नियंता है भगवान। तो ये स्वतंत्र होने का दावा हम नहीं कर सकते कि हम स्वतंत्र हैं, ये मूर्खता है स्वतंत्र होने का दावा करना। फिर हमने देखा कि क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, नियंत्रित हैं, तो ये हमारे हित में है जानना कि नियंत्रणकर्ता के नियम क्या हैं, हमारे लिए उनके क्या आदेश हैं, जिससे कि हम उनको पालन करें तो हम सुखी रह सकते हैं, और यदि पालन नहीं करेंगे तो फिर पनिशमेंट, दंड भुगतेंगे, जैसा कि अभी भुगत रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कल देखा। तो आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन है वो नियंत्रणकर्ता और उसको विस्तार से समझने का तरीका क्या है, कैसे उनके नियमों को हम जान सकते हैं, क्या है वो नियम, क्या वो तरीका है जानने का भगवान को। तो सामान्य रूप से समाज में ये विषय बहुत ही ऐसा है कि यतो मत ततो पत, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, जितने लोग हैं उतने ही मत हैं। कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई बोलता है भगवान निराकार है, ऐसे बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं। तो कैसे समझना है कि कौन है भगवान। कई बार कुछ लोग ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं, सब लोग अलग अलग बात करते हैं इसलिए हम तो किसी को भगवान मानते नहीं, लेकिन वो भी तो तर्कसंगत नहीं है। यदि कुछ लोग अलग अलग बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से भगवान ही नहीं है, भगवान है, लेकिन कौन जानता है वास्तव में भगवान को, ये समझना है, ये जानना है। तो भगवान तो है, वो तो हमने निष्कर्ष निकाला, लेकिन कौन है। तो हमें भगवान की परिभाषा याद रखनी होगी, तब हम पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है। तो हमने देखा कि भगवान मतलब परम नियंत्रण करता, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है और जिसे कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, जो सभी का आदि है और जिसका कोई आदि नहीं है, जिससे हर चीज शुरू होती है लेकिन उसका कोई और उससे शुरुआत ओरिजिन नहीं है, वो नित्य रहने वाला है, जिससे हर चीज प्रारंभ होती है। और क्योंकि हर वस्तु का उद्गम वो है, हर अर्थात हर चीज उसकी संपत्ति है, इसलिए वो ही सबका परम भोक्ता है, एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर है। तो ये भगवान के डेफिनेशन के अंग हैं। भगवान की परिभाषा हम दें तो ये कहने से पहले कि ये भगवान है वो भगवान है, पहले हमें जानना चाहिए कि हम भगवान का मतलब क्या है। तो भगवान का मतलब है परम नियंता, अनादि आदि, जिसका खुद खुद कुछ आदि नहीं है लेकिन वो सबका आदि है, और परम भोक्ता। तो ये इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं भगवान। तो अभी ठीक है, भगवान को कैसे जान सकते हैं हम डिटेल में। तो कुछ लोग ऐसा मंतव्य रखते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से हम भगवान को जान सकते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि देखो भाई मेरे को दिखते नहीं भगवान, अगर भगवान होते तो मुझे दिखते, और क्योंकि भगवान मुझे दिख नहीं रहे हैं इसका मतलब है कि भगवान नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, मुझे नहीं दिख रहा तो नहीं है। तो ये बहुत गहरा विचार है जो आज समाज में बहुत व्याप्त है कि आत्मा देखा है तुमने, किसी से आप बात करें भगवान देखें, भगवान देखें आत्मा, तो फिर क्या अंधविश्वास है, ये भगवान है आत्मा है, जो दिखता है वही विश्वास करने योग्य है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सही है कि जो हम देखते हैं वही विश्वास करने योग्य है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप सब कुछ देख सकते हैं। यदि आप कह रहे हैं कि जो हम देखते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं, यानी वही चीज है बाकी है ही नहीं, इसका मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, आपको ये घमंड है, तो क्या ये वास्तविकता है। क्या मनुष्य सब कुछ अपनी इंद्रियों से जान सकता है, ये प्रश्न है। क्या हमारी इंद्रियां पूर्ण है कि सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, हम सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं इन इंद्रियों से। तो जैसे आप देखें, एक इंद्रिय है आंख, अभी ये आंख को कुछ भी विषय देखने के लिए क्या ये पूर्ण है, अगर ये लाइट नहीं हो यहां पर पूरा अंधेरा हो जाए तो आंखें भले ही बिल्कुल अच्छी हैं किसी की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसे अपना हाथ भी आगे होगा तो भी दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से ये जो हमारी पलकें होती हैं ये आंखों के सबसे नज़दीक होती हैं, लेकिन हम किसी ने भी आज तक अपनी आंखों से अपनी पलकें भी नहीं देखी जो बिल्कुल उसके समीप हैं। और यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान जानते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम जानते हैं कि कुछ कलर्स हैं, कुछ ऐसे रंग हैं जो आंख देख सकती है, और उसके बियॉन्ड, उस वेवलेंथ के परे हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ ध्वनि है, फ्रीक्वेंसी, जो हम सुन सकते हैं और उसके परे नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए एक विसिल होती है जिसको बोलते हैं डॉग विसिल, वो डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि कुत्ता जो है वो सुन सकता है लेकिन आदमी नहीं सुन सकता। तो आप उसको बजाएंगे आदमी नहीं सुनेगा लेकिन कुत्ता सुनेगा, क्योंकि उसकी कान जो है उसकी क्षमताएं अलग हैं हमारे से। तो अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, वो सीमित हैं, अर्थात वो सब कुछ नहीं समझ सकती हैं, सब कुछ उसके द्वारा दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो दावा है कि मैं उसी चीज पर विश्वास करता हूं जिसे मैं देख सकता हूं, वो गलत है, क्योंकि आपकी इंद्रियां सब कुछ नहीं देख सकती हैं। जिस व्यक्ति को कैटरेक्ट है, मोतिया है, तो उसे तो नहीं दिख रहा है कुछ, तो क्या इसका मतलब कुछ नहीं है? है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, आपकी आंख में डिफेक्ट है। आप उसका ऑपरेशन कराइए फिर आपको सब कुछ दिख सकता है। तो उसी प्रकार से ये विषय पहले हमें समझना है कि हमारी क्षमता सीमित है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक इस कमरे में बहुत सारे चींटियां चल रही होंगी, तो अभी उन चींटियों में से जो सबसे बुद्धिमान चींटी हो, सबसे ज्यादा प्रगत हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, ऐसी चींटी को यदि बताया जाए कि ये जो तुम यहां पर घूम रही हो वो इस्कॉन अहमदाबाद का हॉल है जिसमें एक भगवद गीता के ऊपर प्रवचन चल रहा है, तो क्या चींटी कभी समझ सकती है कि ये हॉल एक इस्कॉन मंदिर का एक रूम है? ये चींटी की समझ शक्ति से बाहर का विषय है। चींटी कितना भी प्रयास करे, जब तक चींटी है तब तक वो ये नहीं समझ सकती। चींटी हमारे शरीर पर चलेगी लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये आदमी है, क्योंकि उसको तो बस केवल खाना कहाँ है, उसको बस यही उसकी दुनिया है, कहाँ चीनी का दाना है वो इसकी दुनिया है। इससे अलावा इसके बियॉन्ड उसकी सोचने की क्षमता नहीं है, उसकी सीमित क्षमता है। ऐसे ही एक कुएं का मेंढक है, तो कुएं के मेंढक के लिए वो कुआं ही उसका संसार है, उसके लिए वही सब कुछ है, उसको उसके बियॉन्ड नहीं पता है। तो अगर ये कुएं का मेंढक दावा करने लगे जो मेरी समझ में आता है, जो मैं देख सकता हूँ, जो समझ सकता हूँ, बस वही सब कुछ है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है, तो कैसी बात होगी? ऐसे किसी मेंढक को बताया जाए कि अरे भाई ये तो कुआं बहुत छोटा है, एक समुद्र होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो यदि वो मेंढक अपनी जो उसका अनुभव है कुएं का, उसके अनुसार कल्पना शुरू भी करे करना कि समुद्र कितना बड़ा होगा, तो वो कहाँ तक कल्पना कर पाएगा? सोचेगा आप मेरे कुएं से शायद दुगना हो, तिगुना हो, चार गुना हो, पांच गुना हो, लेकिन क्या वो इस प्रकार से चलते चलते कभी समुद्र को कल्पना भी कर पाएगी? समुद्र का मतलब क्या है? नहीं कर सकता। यानी कि उसकी इंद्रियों का दायरा सीमित है और वो उसके अंतर्गत ही समझ सकता है। तो उसी प्रकार से कॉमन सेंस से हम ये समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से हमारा भी, आदमी का भी एक निश्चित, एक सीमित दायरा है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि आदमी सब कुछ समझ सकता है, जान सकता है अपने इंद्रियों से? जैसे मेंढक का एक दायरा है, वैसे आदमी का भी एक दायरा है। हो सकता है आपका दायरा मेंढक से अधिक हो, आपकी इंद्रियों की शक्ति अधिक है, लेकिन सीमितता तो उसकी भी है, उसके भी ऊपर जीव है, संभावना है कि उनकी क्षमता आपसे भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये दावा लोगों का करना कि हम तो अपने देखने पर ही विश्वास करते हैं, ये गलत है। इसलिए हम देखते हैं कई बार हम शास्त्रों में जब पढ़ते हैं शास्त्रों के वृत्तांत कि महाभारत के युद्ध में इतने हजारों लोग मारे गए, लाखों लाखों लोग मारे गए और भगवान ने अपने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो हम सामान्य लोग क्या सोचते हैं? कहते हैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सामान्य विचार रखते हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानी, कोई क्या कभी कोई पर्वत उठा सकता है, ऐसा सब तर्क रखते हैं। लेकिन आप यदि पर्वत नहीं उठा सकते तो इसका मतलब नहीं कि कोई पर्वत नहीं उठा सकता। कम से कम सैद्धांतिक रूप में मात्र इसलिए कि आप नहीं उठा सकते इसलिए कोई भी नहीं उठा सकता, ये तो बात सही नहीं है सैद्धांतिक रूप में। तो इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से नहीं काट सकते कि कोई उठा सकता है, ये तो कहानियां हैं, आपके लिए कहानियां हैं। जैसे एक चींटी है, एक चींटी या एक मच्छर है, बरसात में होता है, रात को पैदा होता है और सूरज उगने से पहले मर जाता है, तो उसकी आयु एक रात होती है 12 घंटे। उसी के अंदर उसका जन्म होता है, वो बड़ा होता है, संतान उत्पत्ति करता है, बूढ़ा होता है, मरता है, सब कुछ 8 घंटे के अंदर सब खत्म हो जाता है। अभी उस मच्छर को बताया जाए कि आदमी की आयु कितनी है, तो कंपेयर करें उसकी आयु से आदमी की आयु को, तो उसके लिए तो वो सोचेगा ये तो कल्पना है, ऐसा हो सकता है कभी? क्योंकि वो हर चीज को अपने नजरिए से देखता है। तो यही चीज हम भी रखते हैं, हम हर चीज को अपने नजरिए से देखना चाहते हैं। जिस आदमी ने चश्मे में लाल रंग का वो लगाया हुआ है, वो हर चीज को लाल लाल दिखता है उसको हर चीज। ऐसे ही हम हर चीज को अपने ही दृष्टिकोण से तोलना चाहते हैं कि यदि मेरे लिए संभव नहीं है तो किसी के लिए भी संभव नहीं। तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं, आप ही फाइनल हैं, सबसे ऊपर है। तो ये घमंड है, मिथ्या घमंड है ये अपने ऊपर। तो अगर भगवान को कोई वास्तव में समझना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे ये घमंड छोड़ना होगा कि हम महान हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं। ये घमंड जब तक जिस व्यक्ति में है वो भगवान विषय में 1% भी नहीं समझ सकता। चाहे भले ही वो PhD हो, बहुत बड़ा बड़ा उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च कर रखी हो, समाज की दृष्टि से बहुत बड़ा आदमी हो, लेकिन जहाँ तक भगवान को समझने का विषय है उसमें वो निरामूर्ख रहेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये गर्व है कि मैं सक्षम हूँ सब कुछ समझने के लिए भगवान को समझने, यानी वो ये कह रहा है कि भगवान को मैं अपनी मुट्ठियाँ बंद कर सकता हूँ, मैं भगवान को समझ सकता हूँ और फिर समझ करके उसे अपने अनुसार जैसा चाहूँ वैसा मोड़ सकता हूँ। सामान्य रूप से लोग भगवान के विषय को इस दृष्टि से लेकर चलते हैं और भगवद्गीता का अध्ययन भी इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि ठीक है मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है और मैंने अभी संस्कृत भी, मैं प्रखंड पंडित हो गया हूँ संस्कृत का, उपनिषद में मैंने PhD कर ली है, अभी ये भगवद्गीता क्या है मैं देखता हूँ इसमें क्या कहते हैं, ओहो इसमें ये कहा गया, ये 5 श्लोक सही हैं लेकिन ये जो बाकी के 5 श्लोक हैं ये बेकार हैं। यानी हम भगवद्गीता को भी शास्त्रों को भी पढ़ते हैं इस दृष्टिकोण से कि मैं जानता हूँ क्या सही है, जो मुझे लगेगा सही है वो सही है और जो मुझे लगेगा गलत है वो बेकार है, वो कल्पना है, वो बेकार है। तो भगवद्गीता या शास्त्रों को भी हम पढ़ते हैं अपने ही नजरिए से। तो ये दृष्टिकोण है तोलने का दृष्टिकोण, हर चीज को अपने हिसाब से तोलने का दृष्टिकोण। अर्थात आप ये सोच रहे हैं आप महान हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है भगवान को समझने के लिए क्या करना होगा, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव, कि ये जो ज्ञान के प्रयास हैं, ये जो अपने बलबूते पर भगवान को समझने के प्रयास हैं, इसको पहले छोड़ना होगा। नमंत एव, सिर झुकाना होगा पहले कि भगवान मैं बहुत छोटा हूं आपके सामने और मेरी क्षमता नहीं है आपको समझने की। ये विनम्रता जरूरी है अगर भगवान को समझना चाहते हैं। अगर आप चैलेंजिंग दृष्टि से घमंड से भगवान को समझना चाहते हैं तो अपने हिसाब से समझते रहो, कोई भगवान नहीं, मैंने तो खूब स्टडी करके देख लिया, खूब रिसर्च कर लिया, मुझे तो कहीं भगवान दिखे नहीं, इसलिए भगवान नहीं है। आपको भी भगवान नहीं दिख रहे लेकिन सबको भगवान एक ना एक दिन तो दिखेंगे, चाहे नास्तिक है उसको भी भगवान दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, कब दिखेंगे, मृत्यु के समय पर दिखेंगे। भगवान उसके सामने मृत्यु के रूप में आएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि मृत्यु मतलब अभी तक वो नकार आया कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन मृत्यु जब आएगी तब वो 1 सेकंड भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, तब उसको विवश होना पड़ेगा स्वीकार करने के लिए भगवान की सत्ता को, किसी सुप्रीम कंट्रोलर को। अगर कोई भगवान नहीं है और वो सब कुछ है तो फिर कंट्रोल का भी अभी मना कर दो मृत्यु को, बोलो नहीं मरना मेरे को, छोड़ो नहीं मरना, चलेगा नहीं चलेगा, इसका मतलब आपके ऊपर कोई है। तो वहां पर उसको जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान, लेकिन उससे मानने से क्या फायदा होगा, उस समय तो बात चलेगी, जो आपके हाथ में मौका था भगवान को समझने का वो चला गया। मृत्यु के समय अभी तक पूरा जिंदगी आपने भगवान को नकारा तो उसकी वजह से अभी अगले जीवन में असुर योनि निम्न योनि प्राप्त होगी और फिर आप उसको भी रोक नहीं सकते। आपको यदि प्रकृति के नियम के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, आप उसको फिर रोक नहीं सकेंगे कि मुझे नहीं बनना कुत्ता बिल्ली, अरे आपको बनना है नहीं बनना वो विषय नहीं है। तो इसी तरह से, इस प्रकार से हमें विनम्र बनना बहुत जरूरी है। पहले अपनी तुच्छता को समझना बहुत जरूरी है, भगवान की महानता को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वो जो व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है, वो कितना महान है और मैं इसमें क्या हूं। हम अपने को वो बड़ा सोचते हैं लेकिन हम क्या हैं, आप सोचिए। ये पूरी पृथ्वी ऐसे अनगिनत ग्रह हैं और ये सब ग्रह एक ब्रह्मांड के अंदर, और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, हम देख सकते हैं रात को तारे हों कितने 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 ग्रह अनगिनत, उसमें से एक पृथ्वी और उस पृथ्वी में से एक भारत, एक देश, और उसमें से हम गुजराती गुजरात के नागरिक, और उसमें से एक अहमदाबाद, और उस अहमदाबाद में भी कितने लाखों लाखों लोग हैं, और लोगों मनुष्यों के अलावा बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं करोड़ों की संख्या में, और उनमें से हम एक, क्या है हमारी स्थिति, तुच्छ है, बहुत थोड़े छोटे हैं, इतनी सीमितताएं हमारे अंदर है, फिर भी हमारे अंदर इतना घमंड होता है कि मैं भगवान, मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा भगवान के सामने, मैं अपने हिसाब से भगवान को समझूंगा, यदि भगवान है तो मेरे सामने आके दिखाए, जैसे कि भगवान आपका नौकर है या भगवान को जरूरत है कि आप उसको विश्वास करें, भगवान को कुछ कमी हो रही है आप नहीं मानेंगे तो उसका उसकी सत्ता डगमगा जाएगी यदि आप नहीं स्वीकार करेंगे भगवान को। यदि कोई पान के गले वाला आदमी बोलने लगे मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर है, तो क्या नरेंद्र मोदी वहां पर आएगा उसको प्रार्थना करने के लिए, प्लीज मानो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तुम मानो कि नहीं मानो उसे फर्क नहीं पड़ता है नरेंद्र मोदी की सिचुएशन को, तो नरेंद्र मोदी भी क्या है भगवान के सामने, तो कोई मूर्ख भगवान को स्वीकार करे कि ना स्वीकार करे उससे भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है, ये हमारे हित में है कि हम स्वीकार करें भगवान को, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हम अपने भले के लिए हमें विनम्र होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये विनम्रता आ गई है तो ये घमंड क्यों होता है व्यक्ति के अंदर, हम देखते हैं कुछ लोगों के अंदर बहुत घमंड होता है, वो भगवान को, वो अपने को बड़ा महान मानते हैं, क्यों, ये होता है हमारे पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसका अंदर घमंड और सभी प्रकार के अवगुण उदय होते हैं, और ये जो अहंकार, मिथ्या अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसी के ही परिणाम है। इसलिए भगवद्गीता में कहा गया है ये शांतंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, मुझे दृढ़व्रत कौन भज सकता है, कौन मेरा भजन, कौन मेरी भक्ति कर सकता है दृढ़ता से, ये शांतंतगतम पापम, जिसके सभी पाप कर्मों का फल पूरी तरह समाप्त हो गया है, उस व्यक्ति की मति भगवान की भक्ति में दृढ़व्रत लगती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कुछ लोग भक्ति करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, तो ये कारण है, जिनका जीवन पापमय है, जिनके पाप कर्मों का फल अभी बड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि में नहीं घुसता कि भगवान है और हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों में पहले बताया गया है कि सभी को कम से कम पाप कार्यों से मुक्त होना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के विषय को समझने के समीप आए, उसके लायक बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक आवश्यकता भगवान को समझने की है कि भगवान के सामने हम अपनी दीनता को स्वीकार करें, दैन्य बोधिता, हम दीन हैं, हम कभी अपने आप भगवान को नहीं जान सकते हैं, भगवान को मैं अपनी बुद्धि में पकड़ करके नहीं रख सकता हूं, भगवान अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से मेरे को समझा सकते हैं, मेरे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं जब उनकी इच्छा होगी, जब नरेंद्र मोदी की इच्छा होगी तो वो पान के गले में आ सकता है, उसको बता सकता है मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन वो जबरदस्ती करेगा तो नहीं आएंगे। उसी प्रकार से भगवान कोई जबरदस्ती उनको समझने का प्रयास करेगा या अपने हिसाब से, तो ऐसे व्यक्ति से भगवान कोसों कोसों दूर, उसकी समझ से कोसों कोसों दूर रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये समझेगा कि भगवान, यदि मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूं और इस भावना में उनको समझना चाहता हूं, सेवा भावना समझना चाहता हूं, तब भगवान यदि मेरी सिंसियरिटी से प्रसन्न होंगे तब वो स्वयं अपने को प्रकाशित करेंगे। इसलिए कहा गया है अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन मुख्य जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अधा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। भगवान का इसलिए एक नाम है अधोक्षज, जो इंद्रियों के परे हैं, इंद्रिय विषय के परे हैं वो अधोक्षज, तो भगवान अधोक्षज हैं, इसलिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को हम इन जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन सेवोन्मुखे जीवादव, जो भगवान की सेवा में तत्पर है, जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी सेवा में रत है, स्वयं एव सूरत्यादा, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं। ये भगवान को समझने के प्रोसेस का जिस्ट है। तो भगवान अधोक्षज हैं क्योंकि भगवान हमारे आदि हैं। एक बच्चा अगर जानना चाहे कि उसके माँ बाप कौन है, उसकी उसके पिता कौन है, माँ कौन है, तो क्या वो कभी अपनी इंद्रियों के बलबूते पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या कभी जान सकता है कि कौन उसके माँ बाप है? क्योंकि माँ बाप उसके पहले हैं, उसके जन्म के पहले हैं, उसका अनुभव प्रारंभ हुआ जन्म के बाद, तो ये उसके अनुभव के विषय की बाहर की चीज़ है कि उसके माँ बाप कौन है। तो जो चीज़ अनुभव के बाहर की विषय की चीज़ है उसे अनुभव से आप कैसे जान सकते हैं? करेक्ट। इसीलिए माँ और बाप को जानने का तरीका है जब वो बच्चे को बताते हैं बेटे हम तुम्हारे माँ हैं, हम तुम्हारे पिता हैं। वही एकमात्र तरीका है माँ बाप को समझने का, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो आप सोचिए, हम यहां पर जानने का प्रयास कर रहे हैं आदि पिता को, जो पिता के पिता के पिता के पिता सबके पिता के पिता हैं, तो उनको हम कैसे अपने अनुभव से जान सकते हैं या एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं? नहीं जान सकते, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों के परसेप्शन के सबके विषय, हम जितने भी यहां हैं या जितने मनुष्य हैं, हम जब से हैं तब उससे पहले भगवान आदि हैं सब, तो इसलिए वो हमारे अनुभव के बाहर का विषय है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है अचिंत्य ये खलु न तर्के न योजयेत। जो विषय अचिंत्य है, जो आपकी बुद्धि के बाहर का विषय है, उसे तर्क से नहीं समझा सकता, उसे आप कोरे तर्क से नहीं समझ सकते। ये तर्क भगवान है तो दिखाओ, दिखे मेरे, ये ऐसे ऐसे तर्कों से भगवान नहीं दिख सकते। कैसे दिख सकते हैं? जब भगवान अपनी इच्छा, आप हम पर प्रसन्न होंगे तब अपनी इच्छा से हमारे को शक्ति देंगे अपने को समझने की, हमारे को आध्यात्मिक नेत्र देंगे, आध्यात्मिक इंद्रियां हमारे को इस भौतिक कलमश से, इन सीमाओं से बाहर निकालेंगे, तब हम भगवान को देख सकते हैं। यानी कि जब हम अगर इसको समझना चाहते हैं कि ये हॉल जो है वो इस्कॉन मंदिर का एक हॉल है, तो हमें चीटी के स्तर से उठ करके आदमी के स्तर पर आना होगा, तब हम समझ सकते हैं कि इस्कॉन मंदिर का हॉल है। तो उसी प्रकार से जब तक हम भौतिक कलमश से युक्त हैं, शरीर में बंधे हुए हैं, तब तक संभव नहीं है आत्मा को और भगवान को समझना पूरी तरह से। संभव है जब भगवान इस कलमश से हमको मुक्त कर दें, जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हों, उन आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान को देखना, उनसे बात करना, उनको सुनना सब संभव है, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियों से, भौतिक से नहीं। आत्मा की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं ये, भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक शरीर के ऊपर ही एक आवरण है। जैसे मिरर कांच है, उसके ऊपर धूल जमी है, तो आप अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उस गंदगी को हटाना होगा तो आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से अभी आत्मा जो है, हम उनके ऊपर मल चढ़ा हुआ है कि एक शरीर है और देहात्म बुद्धि है, जब तक ये है तब तक हम ना तो अपने को ना तो भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अर्थात भगवान को देखने के प्रोसेस के लिए हमें अपनी तुच्छता को समझ करके भगवान जिस प्रकार से अपने को प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार से भगवान को देखने के लिए तैयार होना होगा। तो भगवान तो चाहते हैं कि वो हमको दिखाएं, प्रस्तुत करें, ना केवल दिखाएं बल्कि हमारे साथ बात करें, हमारे साथ खेलें, ये भगवान चाहते हैं। ये हमारा वास्तविक जीवन है। भगवान नहीं है वो हिटलर जैसे कि हमको यहाँ सब जगह बना दिया हमको दुखी करने के लिए, ऐसा नहीं है। हम उनको विद्रोह करके दुख भोग रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत समोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परन्तप। भगवद्गीता में बताया गया है कि भगवान से इच्छा द्वेष करके हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, तो ये हमारी, हम विद्रोह करते हैं भगवान का। एनीवे, वो विषय हम आगे और थोड़ा देखेंगे गहराई से। तो भगवान को देखने के लिए आपके अंदर शुद्ध इच्छा चाहिए भगवान को देखने की, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, भक्ति भाव अर्थात सेवा करने के उद्देश्य से भगवान को देखने का प्रयास कीजिए, ना कि अपना नौकर बनाने के लिए। उस दृष्टिकोण से भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए तो नहीं दिखेंगे। अगर उनकी सेवा करने के दृष्टिकोण से आप भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान दिखेंगे, क्योंकि हम तुच्छ होने की वजह से, भगवान पर निर्भर होने की वजह से हमारा स्वाभाविक संबंध भगवान के साथ है कि हम सेवक हैं वो स्वामी हैं। जहां कहीं भी एक बड़ा व्यक्ति होता है, छोटा व्यक्ति होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? छोटा व्यक्ति बड़े की सेवा करता है। तो हम जब समझ गए कि हम छोटे हैं भगवान बड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा उनका संबंध क्या होना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन अभी कोई सेवा करने के लिए तैयार है? हम में से सामान्य व्यक्ति सेवा करना चाहते हैं, हम हमेशा बॉस बनना चाहते हैं ना इस भौतिक जगत में, सब क्या बनना चाहते हैं? स्वामी बनना चाहते हैं। हम सभी ऊंची से ऊंची पद पर जाना चाहते हैं जिससे कि हम सबको कंट्रोल कर सकें, हम सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, हम सब मास्टर बनना चाहते हैं, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। ये बीमारी है हमारी जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सबके स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी सबकी स्थिति है कि हम सब नौकर हैं। जीव का स्वभाव ही है सेवा करना, जीव हमेशा से सेवा करने के ही निमित्त है, जीव सेवक है। लेकिन अभी गलत फहमी से हम सब बनना चाहते हैं स्वामी, लेकिन रहते अभी भी दास ही हैं, लेकिन भ्रम में सोचते मैं स्वामी बन गया, होते हमेशा दास ही हैं, अभी भी दास हैं। कैसे? तो हम सोचते हैं ये बहुत ही जगत में मेरी बहुत अच्छी सिचुएशन है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी बड़ी फैक्ट्री है, मेरे अंडर में इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं सबका स्वामी हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं सबका बॉस हूँ, ऐसे हम विचार करते हैं। लेकिन एक राष्ट्रपति है मान लीजिए, वो सोच रहा है कि प्रधानमंत्री, मैं पूरे देश का प्रधान हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, लेकिन वास्तव में वो सबका सेवक है। जब इलेक्शन होता है तो सबके सामने जाता है, प्लीज़ मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपकी ऐसे सेवा करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। तो एक्चुअली वो मैनिफेस्टो क्या है? सेवा करने का मैनिफेस्टो। हाउ विल आई सर्व यू, मैं कैसे सेवा करूंगा? हम सब जैसे, हम सभी व्यक्ति अंततः अपनी इंद्रियों के दास हैं। कोई आदमी सिगरेट पीना शुरू करता है तो शुरू में सोचता है कि मैं सिगरेट का स्वामी हूँ, मैं सिगरेट को अपने भोग के लिए यूज़ करूँगा, ये सिगरेट है अभी मैं इसको एंजॉय करूँगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक के बाद उसको आदत पड़ जाती है सिगरेट पीने की, अभी वो उसका आदि हो जाता है, और आदि हो जाता है तो फिर कौन किसका स्वामी हो जाता है? सिगरेट उसका स्वामी हो जाती है। फिर आदमी छोड़ नहीं सकता, जब सिगरेट ऑर्डर करती है कि अभी एक और सिगरेट पियो, वो मजबूर हो जाता है पीने के लिए। भले उसको दिख रहा है कि मेरे को लंग कैंसर हो रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब जीवा आदेश करती है नहीं नहीं एक और सिगरेट पियो, तो वो उसको पीता है। तो शुरुआत तो होती है, हम सोचते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा सिगरेट को, यानी ये मेरी सेवा में लगाऊंगा इसको, लेकिन अंततः क्या होता है, वो हम उसकी सेवा में लग जाते हैं। ये सबके साथ परिस्थिति है, हर चीज़ को लेकर के। जिसकी हम सेवा करने, जिसके हम स्वामी बनने की सोचते हैं, अंततः उसी की दास बन जाते हैं। इस प्रकार से हम सभी अपनी इंद्रियों के दास हैं, क्योंकि ये क्या होता है, भगवान की जो शक्ति इस भौतिक जगत को चला रही है उसका नाम है माया। माया मतलब इल्यूजरी पोटेंसी, भ्रमित करने वाली शक्ति। तो वो हमको ऐसा भ्रम दिखाती है, अरे तुम मेरे मास्टर बन गए, एंजॉय करो, तुम मास्टर हो, सबसे बड़े हो, लेकिन इसके बहाने हम सबसे सेवा लेती है, हम सबको अपनी सेवा में लगाते हैं, हम सब उसके अंडर में काम करते हैं। दुर्गा, माया देवी जो है वो दुर्गा है, दुर्गा वो हम सबको अपनी सेवा में लगाती हैं, लेकिन हमको ऐसा भ्रम होता है जैसे कि हम सबकी सेवा ले रहे हैं। तो जीव जो है वो हमेशा सेवक है। तो चॉइस क्या है हमारे पास? सेवा तो करनी ही पड़ेगी। चॉइस क्या है, माया शक्ति की सेवा करनी है या भगवान की सेवा करनी है? दोनों ही कंडीशन में भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ भगवान की माया शक्ति की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान की अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की सेवा करना। सेवा करना हमारा स्वरूप है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। जैसे एक नागरिक है देश का, तो देश गवर्नमेंट की सेवा करनी पड़ेगी उसको। तो दो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, एक सिविल डिपार्टमेंट, एक क्राइम डिपार्टमेंट। जो व्यक्ति गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए राजी होता है वो सिविलियन कहलाता है, सिटीजन, उसको गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटी देती है। और जो आदमी कहता है नहीं मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे रूल्स फॉलो नहीं करने, मैं अलग चलूंगा, तो उसको कहाँ रखा जाता है? वो क्राइम डिपार्टमेंट में आता है, जेल में आता है। अभी जेल में किसकी सेवा कर रहा है? जेल में सेवा कर रहा है, कर रहा है, किसकी सेवा कर रहा है, जेल में गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, जेल भी तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, लेकिन अभी अंडर पनिशमेंट कर रहा है, पहले अंडर फ्रीडम कर रहा था, अभी अंडर पनिशमेंट कर रहा है। तो इसी प्रकार से मोबाइल ऑफ कर दिया, इसी प्रकार से हम सभी स्वभाव से सेवा करने के लिए बने हैं। जब हम भगवान की सेवा करने से मना करते हैं तो भगवान की माया शक्ति की सेवा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये समझ करके हमें अपनी दैन्यता को समझना है और समझना है कि हम माया से भ्रमित हैं। इसलिए माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो व्यक्ति माया से मुग्ध है, जो उसके प्रभाव में है, उसे अपने आप भगवान के विषय में ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव कृष्ण कैल वेद पुराण, जीव कृपाए कृष्ण कैल वेद पुराण, इसलिए जीव पर कृपा दृष्टि करने के लिए भगवान ने वेद शास्त्र दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हम भगवान को अपनी बुद्धि से अपने आप नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जब भगवान कृपा करेंगे तब। और कृपा भगवान कब करेंगे? भगवान कृपा करने के लिए तैयार हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि हम तो तब समझेंगे जब भगवान कृपा करेंगे, तो हम खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। जब भगवान कृपा करेंगे तब समझेंगे। आप मंदिर आइए, जब भगवान की कृपा होगी तब मंदिर आ जाएंगे। तो भगवान क्या किसी को डिक्लेयर कर दिए कि मैं आप पर कृपा करने के लिए तैयार नहीं हूं? भगवान तो सब पर कृपा करने के लिए तैयार हैं, आप कृपा लेने के लिए राजी होने चाहिए। भगवान कोई किसी के द्वेषी नहीं है, भगवान तो सबके सुहृद हैं। चाहे आप भगवान से द्रोह करते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी से हमसे द्रोह नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं। वो तो हमेशा हम कह रहे हैं, नहीं तो क्यों भगवद गीता छोड़ जाते हैं? सबके लिए है भगवद गीता, भगवान सबके लिए कह रहे हैं, स्पष्ट खुले हम कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। भगवान किसी को मना नहीं कर रहे हैं, सबके लिए ओपन है, आप आओ मेरी शरण में आओ। लेकिन हम नहीं चाहते हैं उनकी शरण में जाना, तो फिर इसमें भगवान क्या करेंगे? हम लोग भगवान की शरण में आना नहीं चाहते हैं। तो भगवान इच्छुक हैं, भगवान हमसे भी अधिक इच्छुक हैं अपने को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन कंडीशन यही है कि हम तैयार होने चाहिए उन्हें जानने के लिए, उनके शरण में जाने के लिए। अगर नहीं होंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार ही भगवान आपको बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे। आपकी इच्छा है भगवान को भूलने की, मैं भगवान से द्वेष करना चाहता हूं, भगवान को मार देना चाहता हूं, तो भगवान आपको ऐसी योनियों में डालेंगे जिसमें आप भगवान से और दूर और दूर और दूर जाते हैं, क्योंकि आप ऐसा चाह रहे हैं। और आप यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहेंगे तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, और आप भगवान से दूर जाना चाहेंगे तो ठीक है, फिर आपको भगवान ऐसी योनियों में डालेंगे कि आप और दूर जाएं। आप सोच के रखिए, बाद में फिर पूछेगा। तो इसीलिए भगवान को समझना मुश्किल नहीं है, समस्या है हमारे साथ, हम लोग सिंसियर नहीं हैं। ज्यादातर लोग भगवान के नाम पर क्या चाहते हैं? हमें ऐसा भगवान चाहिए जो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर दे। भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान लिस्ट लेके जाते हैं, प्रमोशन हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पूरा लिस्ट लेके जाते हैं। और भगवान, अगर ये हो गई मेरी लिस्ट पूरी तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, और नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा है आपका? यानी कि हम भगवान को समझना नहीं चाहते हैं, हम एक नौकर ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं भगवान हमारे नौकर बन जाएं, हमारी जो ऑर्डर है उसको पूरा करें। हेयर इज माई ऑर्डर, ये मेरा आदेश है, इसको सबको पूरा करो। तो अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं समझ करके कि कौन भगवान है, तो भी ठीक है, सुकृतिवान है। जो लोग भगवान को नकारते हैं उससे अच्छे हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। आप भगवान को इस प्रकार से यथारूप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब आप भगवान के पास जाएंगे, भगवान मैं समझ गया, मैं आपका दास हूं, बहुत योनियों से, बहुत समय से आपको नकारता आया हूं, और इस प्रकार से जन्म जन्मांतर भटकता आया हूं अलग अलग योनियों में, अभी मनुष्य जीवन में थोड़ी मेरी बुद्धि वापस आ रही है कि मैं समझ रहा हूं कि मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं हमेशा आपका दास हूं, अभी मैं समझ रहा हूं, इसलिए अभी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कृपया अभी मुझे बुद्धि दीजिए आपको समझने की, मैं पुनः आपका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं। जब जीव ऐसी इच्छा करता है तब भगवान उसको सब फैसिलिटी देते हैं अपने को समझने की। क्या फैसिलिटी देते हैं? ऐ ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रता दीजिए। भगवान हम सबके हृदय में भी विराजमान है परमात्मा रूप में, जब भगवान देखते हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में अभी शुद्ध इच्छा है भक्ति करने की, भगवान को समझने की, उनकी शरण में जाने की, तब भगवान अपने प्रतिनिधि को, गुरु को भेजते हैं, अभी उसको गाइड करो, उसको गाइड करो। इस प्रकार से भगवान मदद करते हैं सब तरीके से। एनीवे, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन भगवान को समझने की, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो और भगवान को की सेवा करने की इच्छा करो, ईगरनेस, ईगरनेस। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान को देखने का, जानने का एक मूल्य है, एक ही मूल्य है। आप उनको पैसे से नहीं खरीद सकते, किस चीज से नहीं खरीद सकते, क्या खरीदेंगे, वो खुद लक्ष्मीपति हैं, उनको आप क्या पैसे से खरीदेंगे। तो कैसे उनको आप जान सकते हैं, तत्रम लौल्यम एकलम मूल्यम, एक ही मूल्य है उसका, लौल्यम, ईगरनेस, शुद्ध इच्छा, भगवान की सेवा करने की, उनकी शरणागत होने की तीव्र इच्छा ही मूल्य है भगवान को यथारूप समझने का। जिसके अंदर ये शुद्ध इच्छा है वो सही रास्ते पर जाएगा और भगवान को समझ पाएगा, और जिसके अंदर इसके अलावा और कोई इच्छा है वो भगवान के नाम पर कुछ और समझेगा, कहीं और जाएगा, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे जैसा भगवान चाहिए। जिसे ऐसा भगवान चाहिए जो उसकी बीमारी ठीक कर सके, तो ऐसे बहुत सारे चमत्कारी लोग मिल जाएंगे, वो सोचेगा यही भगवान है, क्योंकि उन्हें वास्तव में भगवान नहीं चाहिए, उन्हें भगवान के नाम पर कुछ और चाहिए। तो इसलिए ये हमारी परीक्षा है, अगर हमें भगवान समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन भगवान है, तो ये हमारी परीक्षा है कि अभी आपकी हृदय में शुद्ध इच्छा नहीं है भगवान को समझ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको भगवान विषय समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारी योग्यता ये होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ें तो ठीक है, अभी हम ये सुनने के बाद या अभी समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से तो कम्युनिकेट करेंगे, हमें बताएंगे अपने विषय में, जैसे माता पिता बताते हैं बच्चे को, हम तुम्हारे माँ बाप, ऐसे नहीं बस पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं, सब बताते हैं हम तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो जो परम पिता हैं वो क्यों नहीं बताएंगे, तो वो ही बताएंगे, है ना। तो लॉजिकली स्पष्ट है कि जब भगवान ने सृष्टि को बनाया है, हमको यहाँ भेजा है, तो भगवान हमको ये मैसेज भी देंगे, दे रहे हैं, देते हैं कि कौन हम हैं, क्यों बनाया है, मैं कौन हूँ, ये सब ज्ञान भी भगवान देंगे, क्योंकि वही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। तो निश्चित वो देते हैं, अगर नहीं देंगे, जैसे कोई आदमी ने ये बनाया मान लीजिए माइक्रोफोन, तो वो इसके साथ में एक पूरा लिटरेचर देता है ना जब बनाता है, तो कि ये मैंने क्या बनाया है, किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है, इसको कैसे यूज़ करना है, खराब हो जाए तो क्या करना है, यूजर मैनुअल देते हैं, यूजेज मैनुअल, है ना। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि बना करके बस बैठ जाए, उससे ऐसा कोई पागल नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार से स्पष्ट है कि भगवान जब निर्माण कर रहे हैं सृष्टि का, तो स्पष्ट है कि वो भी कोई मैनुअल दे रहे होंगे, कोई लिटरेचर दे रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं हमें, देते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान ये सब क्यों बनाए हैं, क्या है सब चक्कर। तो इसीलिए भगवान को तत्वतः जानने का तरीका है भगवान से उनके विषय में सुनना। भगवान को जानने का यथारूप तरीका है स्वयं भगवान से उनके विषय में सुनना। नरेंद्र मोदी को जानना है या तो नरेंद्र मोदी से सुनिए, या उनके बिल्कुल जो निकटवर्ती लोग हैं, उनके सेवक या बिल्कुल निकटवर्ती लोग, उनसे सुनिए, वो जानते हैं उनके बारे में डिटेल, वो क्या खाते हैं, क्या उनका पसंद है, क्या नापसंद है, ये सब डिटेल्स। उसी प्रकार से भगवान से सुनिए उनके बारे में, या भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं, जो भगवान के निकटवर्ती सेवक हैं, जो पूरी तरह से उनके साथ संबंध में युक्त हैं, उनसे समझिए भगवान के बारे में, तो ही संभव है भगवान को समझना। क्लियर, भगवान को समझना संभव है डायरेक्टली या तो भगवान से सुने, जैसा कि अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन को यह सौभाग्य प्राप्त था कि वो साक्षात भगवान से सुन रहे हैं उनके विषय में। भगवान उद्घोषणा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, आई एम गॉड, ही डिक्लेयर्स। और केवल डिक्लेयर नहीं करते, प्रूफ भी करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे विषय। तो अर्जुन का सौभाग्य था डायरेक्ट भगवान से सुन रहा था उनके विषय में। तो अगर हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है, हम डायरेक्ट भगवान से सुनने लायक नहीं है, अर्जुन जैसे सिम्टम हमारे अंदर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अर्जुन से सुनेंगे या अर्जुन जैसे भगवान के किसी भक्त से सुनेंगे, भगवान के प्रतिनिधि सुनेंगे, तो जो लाभ अर्जुन को साक्षात भगवान से सुनने में हुआ वही लाभ हमको भी होगा। जो लाभ अर्जुन को हुआ वही लाभ हमको भी होगा। जैसे अर्जुन स्पष्ट समझे भगवान को, वैसे हम भी स्पष्ट समझ सकते हैं भगवान को यदि हम भगवान के किसी सच्चे प्रतिनिधि से सुनेंगे। अर्थात भगवान विषय ज्ञान भक्तों के, भगवान के भक्तों के द्वारा हमारे तक पहुंचता है। भगवान विषय ज्ञान भगवान के भक्तों के द्वारा हमारे तक पहुंचता है। तो वो ज्ञान क्या है? तो जो वैदिक साहित्य है, वेद, वेद अर्थात सभी ज्ञान का स्रोत, वो वेद कहलाता है। भौतिक आध्यात्मिक सभी ज्ञान का स्रोत वेद है। जितना भी ये ज्ञान है एक्चुअली आप सभी को ट्रेस कर सकते हैं वेद के अंदर। सब ज्ञान का जड़ वेद में मिलेगा, वो सबका सोर्स है ना? तो वेद वो ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ से भगवान, सृष्टि के प्रथम प्रथम जीव ब्रह्मा और इस प्रकार से आगे गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान बहता आता है उसको वेद कहते हैं, उसको शास्त्र कहते हैं। जो वैदिक लिटरेचर है वो भगवान के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ से जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में यानी भगवान के भक्तों की श्रृंखला में चला आ रहा है उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। ये है शास्त्र की परिभाषा। तो जैसा हमने पहले बताया कि भगवान अपने बारे में अपने भक्तों को ही बताएंगे। कोई व्यक्ति अपने बारे में डिटेल किसको बताता है? अपने दुश्मन को बताता है या जो उनसे द्वेष करते हैं उनको बताता है या जो उनके मित्र हैं उनको बताता है? मित्रों को बताता है। तो स्वाभाविक है कि भगवान के मित्रों से, भगवान के भक्तों से हम भगवान को जान सकते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। ये जो रहस्य है जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, रहस्य है ये तुम ही समझ सकते हो। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, दुर्योधन भी था। तो भगवान ने दुर्योधन को नहीं भगवदगीता सुनाया, अर्जुन को सुनाया। क्यों सुनाया? उसकी क्वालिटी बता रहे हैं अर्जुन की। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ज्ञान। तो भक्तों के अंदर और भगवान के भक्तों के अंदर ही ये योग्यता है भगवान को समझने की। इसलिए भगवान उनको अपने बारे में रिवील करते हैं, प्रकाशित करते हैं सब ज्ञान। और फिर वो भक्त आगे जो उनके भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, वही ज्ञान आगे उनको देते हैं। जो भक्त नहीं बनना चाहते तो वो तो ज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो इसीलिए भगवान के विषय में ज्ञान खुद भगवान से प्रारंभ होने वाली भक्तों की गुरु शिष्य परंपरा में ही आता है। ऐसे विज्ञान को हम शास्त्र कहते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों को पढ़ करके स्वयं भगवान को समझना चाहते हैं, ये भी एक वैरायटी है। कुछ तो हैं कि अपने आप बिना शास्त्रों का सहारा लिए भगवान को समझना चाहते हैं। एक वैरायटी है शास्त्रों से समझना चाहते हैं, भगवद गीता से समझना चाहते हैं, वेद पुराणों से समझना चाहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नहीं समझना चाहते। वो क्या करते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत के पंडित बन जाते हैं ग्रामर के, और फिर सब शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, सब प्रकार की भगवद गीताओं का अध्ययन करते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, वहां उनकी शरणागति नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? अभी भी वही अहंकार है, शास्त्रों को मैं अपने आप समझ सकता हूं। वही अहंकार, वही डिजीज कि मुझे शरण लेने की जरूरत नहीं है भगवान की, मैं अपनी बुद्धि से समझ सकता हूं भगवान को। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं, एक है आरोह पंथ और एक है अवरोह पंथ। एक है असेंडिंग प्रोसेस, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, यानी जीरो से शुरू करके अपने आप खोज करो, खोज कर करके आगे बढ़ो, उसे कहते हैं आरोह पंथ, ऊपर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना। और एक होता है अवरोह पंथ। अवरोह पंथ मतलब अथॉरिटी से सुनना, जो उस ज्ञान को जानने वाला है उससे सुनना, उसे कहते हैं अवरोह पंथ। तो भगवान को हम इन दोनों में से कौन से तरीके से जान सकते हैं, आरोह पंथ से या अवरोह पंथ से? दोनों से जान सकते हैं, अवरोह अवरोह से जान सकते हैं। यानी भगवान के द्वारा अगर हमको बताया जाए तो ही जान सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे जो ज्ञान आ रहा है उससे जान सकते हैं, और जो नीचे से ऊपर आ रहा है यानी अपने बलबूते पर जो ज्ञान ले रहे हैं उससे नहीं जान सकते। तो इसलिए जो लोग शास्त्रों का स्वतंत्र अध्ययन करते हैं बिना गुरु की शरण में जाए हुए, बिना गुरु शिष्य परंपरा, बिना भक्तों के मार्गदर्शन के, बिना अपने आप, मुझे क्या जरूरत है किसी की शरण में जाने की, मैं तो खुद पंडित हूँ संस्कृत का, मैं तो खुद पढ़ लूंगा, तो ऐसे लोग कभी भगवान शास्त्र पढ़ करके भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कोई भौतिक विषय नहीं है कि मात्र आप उसको भौतिक दृष्टि से अध्ययन, क्यों? क्योंकि बीमारी तो वही है, खुद मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से भगवान कभी उनकी उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेसानुग्रहित एवये जानाति तत्त्वं भगवन महिम्नो ना चापि अन्य चरण विचन्वन। भागवत शास्त्र में कहा गया है जो भगवान के चरण कमलों की थोड़ी सी भी कृपा जिसको प्राप्त हुई है, अर्थात जो भक्ति में रथ है, जिसका भक्ति भाव से जो भगवान को अप्रोच कर रहा है, जिस थोड़ा सा भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, वो भगवान को तत्वतः समझ सकता है। लेकिन अन्य जो ऐसी भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, वो लाखों लाखों जन्मों तक भी चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, तो उनको भगवान समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए ये पॉइंट हम बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है भगवान को समझने के लिए, कि हम विनम्रता से भक्ति भाव से अप्रोच करें। ये पूरी भगवद गीता को पढ़ने की यही कंडीशन है। आपका एटीट्यूड होना चाहिए अर्जुन की तरह। अर्जुन भक्ति भाव से समझ रहा था। जब अर्जुन ने भगवान के सामने सब बहुत सारे तर्क वितर्क किए कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, तो अंत में वो कंफ्यूज था। उसे पता था कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन सब उल्टा सीधा हो रहा है, ये सब सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो वो अंत में भगवान से के शरण में जाता है। कार्पण्य दोष व प्रति स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्पूर्ण चेता यस्यात् निश्चितम् भूय तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। हे भगवान, मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया हूँ, अभी शिष्यस्ते अहम, मैं अभी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, शादी माम, मुझे डिसिप्लिन कीजिए, त्वाम प्रपन्नम, अभी मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना है वो व्यक्ति ही योग्य है भगवान को समझने के। फिर वो व्यक्ति समझ सकता है शास्त्रों को ऐसी विनम्र भाव से जो समझेगा। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये शास्त्र बह रहे हैं, इसलिए शास्त्रों को हमें अपने आप से अध्ययन नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा। तो चार अधिकृत गुरु शिष्य परंपराएं हैं जो खुद शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं। भगवान से प्रारंभ होने वाली चार यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे आप कोई मान लीजिए मेडिकल कोर्स करने जा रहे हैं, तो आप देखते हैं पहले अपने बच्चे को भेजने से पहले कि ये जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड भी है कि नहीं। कोई अपने ही अलग से कोई खोल के बैठ जाए, मेडिकल किताबें तो उपलब्ध हैं मार्केट में, हा? तो कोई अपने आप से पढ़ने लगे या पढ़ाने लगे तो उस ऐसी डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं कि भगवान से प्रारंभ होने वाली परंपराएं कौन सी हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि चार परंपराएं हैं जो भगवान से प्रारंभ हो रही हैं और जिनमें ये ज्ञान बह रहा है, मनुष्य संस्कृति तक आ रहा है। कौन कौन सी वो परंपराएं हैं? एक है ब्रह्म संप्रदाय, जो भगवान श्री कृष्ण से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया। तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवे, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं और उनसे गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। नारद मुनि, व्यासदेव, वो परंपरा के अंतर्गत ये ब्रह्मा संप्रदाय है। दूसरा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय भगवान और उसके बाद फिर लक्ष्मी जी और वहां से जो परंपरा होती है वो श्री संप्रदाय। फिर कुमार संप्रदाय, भगवान और भगवान से फिर चार कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनसे जो परंपरा चली आ रही है उसे कुमार परंपरा कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। और फिर रुद्र संप्रदाय, भगवान से शिव जी और शिव जी से जो परंपरा चली आ रही है उसे। इन चारों परंपरा में आधारभूत सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, ये कोई आपस में अलग, क्योंकि रूट एक ही है भगवान, इसलिए इन चारों की जो निचोड़ है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इन चारों परंपराओं के माध्यम से शास्त्रों को समझना ही भगवान को समझने का एकमात्र उपाय है। तो ये जो शास्त्र हैं, जो चार परंपराओं के माध्यम से आ रहे हैं, यदि हम उनको अवलोकन करें तो हम पाएंगे, हम विश्वास हमको होगा कि निश्चित रूप से ये ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया ही ज्ञान है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है हमारा कि हम कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, ये कोई ये कैसे माने कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। कोई बहुत लोग बोलते हैं कि शास्त्र भी तो आदमी के द्वारा लिखे गए, ये भी तो मुनियों के द्वारा अपने आप बना दी गई हैं बातें, या उनके अपने मंतव्य हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये शास्त्र भगवान का मंतव्य है, ये भगवान का दिया गया ज्ञान है, ये किसी व्यक्ति का दिया गया ज्ञान नहीं है। तो शास्त्रों को जो लिखने वाले हैं, लिखित रूप देने वाले, वो हैं व्यासदेव। 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने इसको लिखित रूप दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी का ही अपना ज्ञान है, खुद व्यासदेव जी कहते हैं इन ग्रंथों में जो उन्होंने लिखे हैं कि ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु नारद मुनि से मिला, और नारद मुनि बताते हैं ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु ब्रह्मा जी से मिला, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये ज्ञान मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिला। तो फिर हम अपनी बुद्धि क्यों लड़ाएं उसमें, जब खुद जो लिखने वाला है वो बोल रहा है कि मुझे मेरे ये ज्ञान मुझे यहां से मिला है, तो हम उसमें क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं अपने आप। तो ये ईर्ष्या का कारण ऐसा होता है। एनीवे, तो व्यास देव जी ने 5000 वर्ष पूर्व इसको लिखित रूप दिया, क्यों? क्योंकि तब कलयुग प्रारंभ हो रहा था, और उन्होंने देखा कि कलयुग के जीव ऐसे होंगे उनको कुछ स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अभी जो ज्ञान श्रुति रूप में चला आ रहा है, गुरु से शिष्य सुनता है और सब समझाता है, फिर आगे सुनता है सब याद रहता है, ऐसे करके श्रुति बोलते हैं, यानी गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है। लेकिन जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे, मंद सुमंद मतयो, आयु बहुत कम होगी, स्मरण शक्ति नहीं होगी, तो इसलिए अभी जरूरी है इस ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिखित रूप दे दिया जाए, जिससे ये रिकॉर्ड रहे, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड। अपने अपने मन से लोग बहुत सारे भगवान बना लेंगे, ये सब कलयुग का लक्षण होगा, तो इसलिए उन्होंने इसको स्टैंडर्ड, अपने मन से नहीं बना सकते, यहां है ज्ञान क्या सही है क्या गलत है, रेफरेंस, इसका रेफरेंस लेकर बात करो। तो ये वेद जो है, शास्त्र जो है, गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और व्यासदेव जी ने इसको लिखित रूप दिया है। तो यदि हम अध्ययन करें इन शास्त्रों का, तो हम पाएंगे शास्त्रों के अंदर जो भी कुछ बात बताई गई है वो हमेशा से सच होती है, आज भी सच है, 1000 साल पहले भी सच थी, और हम देख रहे हैं कि हमेशा सच होती है। जैसे एक उदाहरण लें तो शास्त्रों में बताया गया कि मल जो है वो अशुद्ध होता है, उसका स्पर्श विधि हो जाए तो हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन जो गाय का गोबर है वो अति शुद्ध है, वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देता है। तो अभी ये विरोधाभास लग सकता है हमको कि शास्त्र में क्या ये एक जगह ऐसा लिखते हैं एक जगह ऐसा लिखते हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये समझा गया है, मान लिया गया है, समझ लिया गया है कि गाय के गोबर में सब एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं, वास्तव में वो शुद्ध है, अन्य मल से बिल्कुल अलग है। जो लोग गांव के होंगे, आप एक्चुअली काफी लोग का लिंक होगा, तो गांव में सभी लोग लिपाई करते हैं, गोबर से लिपाई करते हैं, और आप देखिए पूरा वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है, किचन के अंदर लिपाई होती है। तो आप किसी दूसरे मल से मल को यूज करके देखिए तो क्या हाल होगा, तो अंतर है गाय के मल में और अन्य किसी के मल में अंतर है। तो ये बात शास्त्रों में पहले से लिखी है, हमेशा से लिखी, लेकिन आप जिसको शास्त्र में विश्वास है कि शास्त्र तो सत्य है वो उसको जस्ट स्वीकार कर लेगा, और जिसको विश्वास नहीं है ठीक है आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो तो भी वही निष्कर्ष पे आओगे। उसी प्रकार से हम देखें शास्त्र में भविष्यवाणियां की गई, कई कई 1000 साल आगे की भविष्यवाणियां जो सही सिद्ध हुई। शास्त्र में भागवतम में बुद्ध अवतार का वर्णन है, 5000 साल पहले लिख दिया गया कि 2000 साल बाद इस प्रकार से बुद्ध के रूप में भगवान अवतरित होंगे, पशु हत्या को रोकेंगे, अहिंसा के बारे में बताएंगे और शास्त्रों को की निंदा करेंगे। यस, और ऐसा ही किया क्योंकि उस समय आवश्यक था, क्योंकि सब लोग बलि चढ़ा रहे थे जानवरों की अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए, तो इसलिए भगवान खुद आकर के बोलते हैं शास्त्र को छोड़ो, पहले तो तुम आदमी बनो, पहले पशु हत्या बंद करो, अहिंसा परमो धर्मो। तो ये भविष्यवाणी शास्त्रों पहले से ही कर दी गई, जो ऐसा ही हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बताया गया, कलयुग के लक्षण पूरे बताए गए, आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा कि इतने साल पहले सब बताया गया है, धीरे धीरे चावल, दाल, ये सब चीजें बहुत दुर्लभ हो जाएंगी, फल, चीनी, ये सब मिलना मुश्किल हो जाएगा, बारिश सब अस्त व्यस्त होगी, धीरे धीरे कमी हो जाएगी। हाँ, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। ब्राह्मण केवल जनेऊ से अपने को ब्राह्मण घोषित करेगा, गुरु नहीं होंगे, बस केवल जनेऊ से घोषित करेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। और सरकार जो है वो जो गुंडे हैं वो लोग सरकार में आ जाएंगे, और हैवी टैक्स लगाएंगे सबके ऊपर। एक तरफ प्रजा पीड़ित होगी टैक्स से, और एक तरफ अनाज उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि बारिश नहीं होगी, ये सब वर्णन है। और लंबे लंबे बाल रख करके लोग सोचेंगे ये ब्यूटी का, ये सुंदरता का मानदंड है। आजकल देखिए सब लोग, लड़के लोग भी सब लंबे लंबे बाल रखते हैं, वो ये सुंदरता का मानदंड माना जाएगा। ये सब लक्षण बताए गए हैं। तो शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी भविष्यवाणियां हैं सब जो सही हुई। और शास्त्रों में ऐसा ऐसा विज्ञान है जैसे ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान जो निर्भर करता है नक्षत्रों के आधार पर, वो ज्ञान होता है। तो इसका मतलब वो जो सब चांद और सूरज की डिस्टेंस और उनके मूवमेंट्स, ये सब का विज्ञान है शास्त्रों में। कितने कितने हजार साल पहले, टेलीस्कोप से पहले, स्पेसशिप भेजने से पहले, वो सब ज्ञान वहां है। तो यानी कि शास्त्रों का ज्ञान कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, ये सब आधुनिकीकरण से पहले वो सब उपस्थित है, और कोई मिस्टेक नहीं है, 100% सबके लिए सही है। तो यानी कि वो ज्ञान परफेक्ट है। ये क्या दिखाता है कि उस ज्ञान को देने वाला कोई परफेक्ट आदमी होगा। हम कोई ज्ञान बनाते हैं, हम कोई जानकारी, हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो अपूर्ण होता है, इसलिए उसको बदलने की जरूरत पड़ती है। आज मैंने जो 15 साल पहले जिस चीज को लिख करके 12वीं का एग्जाम पास किया था, आज यदि मैं वही चीज लिखूं 12वीं के एग्जाम में तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि 15-20 साल के अंदर वो सब बदल गया है। अभी मैं वही चीज लिखूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और उस समय फर्स्ट क्लास मार्क्स मिले, और जो आज पढ़ रहे हैं आज से 20 साल बाद वो भी गलत हो जाएगा। तो ये लक्षण है आदमी के द्वारा बनाए गए, दी गई जानकारी, वो बदलती रहती है क्योंकि वो अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान जो ज्ञान देते हैं वो परम सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवदगीता का कोई एडिशन नहीं आता है, रिवाइज एडिशन ऑफ भगवदगीता, बदलने की जरूरत पड़ी, 5 लोग गलत सिद्ध हो गए, बदलने की जरूरत नहीं। कहीं भी आप टेस्ट कर लीजिए, अमेरिका के लिए, अमेरिकन के लिए, इंडियंस के लिए, अफ्रीकन के लिए, आज 1000 साल पहले, ये ज्ञान हमेशा सही रहेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिखाता है कि शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, ये साक्षात भगवान के द्वारा गया ज्ञान है, इसलिए परफेक्ट है। इसीलिए भगवान को समझने के लिए हमें इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ये जो वेदों का ज्ञान आ रहा है, तो वेद में क्या क्या चीज आती है ये भी जान लेना जरूरी है। तो शास्त्रों में अंदर आते हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, फिर वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र, फिर उपनिषद जो वेदों का यज्ञ माना है, फिर इतिहास और पुराण। कई लोग बोलते हैं ये पुराण ये सब वेदों का भाग नहीं है, क्यों नहीं, खुद शास्त्रों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि इतिहास पुराण ये जो है पंचानाम वेदानाम विदु, ये 5वें वेद है। तो जब खुद वेदों में लिखा है कि यंग है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले कि नहीं है। वो कौन लोग बोलते हैं जो शास्त्रों को आरोपण से पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं पढ़ते, अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं ये पुराणों में तो कहानियां दी हुई है, इसलिए ये सब बाद में बनाई होंगी, ये सब बाद में ऐड कर दिया होगा। हमारी बुद्धि में तो ये आता है, हाँ बस निराकार है, ये अच्छा लगता है, ये एक्सेप्टेड है, और जो हमको अच्छा लगता वो सब बाद में बना दिया गया। तो ऐसे नहीं चलेगा, शास्त्रों को ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो वेदांत सूत्र और पुराण, पुराण के अंदर आ गया महाभारत, और महाभारत का अंग है भगवद्गीता, और अमलम पुराण भागवतम। व्यास देव जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में, मैच्योरिटी में, वेदांत सूत्र, महाभारत सब कुछ लिखने के बाद भी उनको असंतुष्टि रही, संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर उनके गुरु नारद मुनि वहां आते हैं, और नारद मुनि देखते हैं कि वो असंतुष्ट हैं, और व्यासदेव जी उनसे पूछते हैं कि मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। उसको ले लीजिए, नहीं तो सब लोग भगवद्गीता की जगह अभी राम कथा सुनने लगे, देख सुनेंगे। तो लिंक हाँ असंतुष्टि महसूस कर रहे थे, इसीलिए नारद मुनि ने बताया कि तुमका संतुष्टि इसलिए है कि तुमने कहीं भी भगवान की शुद्ध भक्ति का स्पष्टतः क्लियर कट नहीं बताया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इस विषय में तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन स्पष्टतः भगवान की लीलाओं का शुद्ध भक्ति का गुणगान पर्याप्त मात्रा में नहीं किया है, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करता तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए इस अवस्था में व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, इसलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। ये हाईएस्ट वैदिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से ये सब वैदिक ग्रंथ हैं और इनको गुरु शिष्य परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपराओं में आचार्य हैं, उन आचार्यों के मत के अनुसार हमें समझना है इन शास्त्रों को। जैसे मध्वाचार्य वो ब्रह्म संप्रदाय के निकटवर्ती आचार्य हैं, अभी जो हाल के आचार्य हैं। फिर रामानुजाचार्य वो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। फिर विष्णु स्वामी वो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। निंबार्कर स्वामी वो कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो शास्त्रों को पढ़ना है इन आचार्यों के बताए की समझ के अनुसार। तो शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीज साथ में हो तब आप समझिए ये सच है। जैसे आप कोई कोर्ट केस, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो जो आपका लॉयर बोल रहा है वो चीज लॉ बुक में होनी चाहिए, और जो पहले के जजमेंट हुए हैं, जजेस ने जो पहले जजमेंट दिए हैं, वो भी उसको हाँ करने चाहिए। जब ये तीन चीज मिल जाती हैं तब जज कहता है यस दिस इज राइट। आपका लॉयर जो बोल रहा है, लॉ बुक जो बोल रही है, और प्रीवियस जजमेंट्स, ये तीन चीज जब एक साथ सही होती हैं तब जज इसको स्वीकार करता है। अगर एक भी चीज अलग है तो स्वीकार नहीं है। उसी प्रकार से गुरु यानी जो व्यक्ति हमको शिक्षण दे रहा है, तो वो जो शिक्षण दे रहा है वही चीज शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए जो हमने शास्त्र वर्णन किए, और वही जो पूर्ववर्ती आचार्य जो समझाए उनको उसी समझ के अनुसार होनी चाहिए। जब ये तीन चीज मिले तब वो चीज शास्त्र है, तब वो चीज फाइनली एक्सेप्टेबल है। गुरु, साधु, शास्त्र, ये चेक एंड बैलेंस फार्मूला है कि केवल शास्त्र पढ़ लिया लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, यहां ऐसा कहा है वहां ऐसा कहा है, तो पहले के आचार्य को पढ़ो वो क्या समझा रहे हैं। या आप कोई व्यक्ति को सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई गुरु गुरु बन रहा है, गुरु का पद ले रहा है और बोल रहा है ऐसा ऐसा है, आप टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, शास्त्र से बोल रहा है कि अपने मन से बोल रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। गुरु को कैसे समझें, क्योंकि गुरु गुरु तो जरूरी है, मैंने बताया गुरु शिष्य गुरु के माध्यम से समझना है, तो गुरु कैसे परखें हम। सब लोग अपने गुरु बोलते हैं, क्या कोई भी गृहस्थ धारण करने से गुरु बन जाता है, नहीं। तो गुरु के लक्षण है, क्या लक्षण है, एक तो वो खुद उसने गुरु से सीखा होना चाहिए, सेल्फ मेड गुरु नहीं होना चाहिए वो। टीचर को पहले शिष्य बनना पड़ेगा, ए गुड टीचर हैज टू बी ए गुड स्टूडेंट, तभी वो अच्छा टीचर बन सकता है। तो एक गुरु को पहले शिष्य बनना पड़ेगा, तो क्या वो किसी का शिष्य बना है, यानी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है या इंडिपेंडेंटली अपने आप गुरु बन गया है, और वो जो बोल रहा है शास्त्र के अनुसार बोल रहा है या अपने आप उसमें कुछ ऐड कर रहा है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, तो कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअली कुरुक्षेत्र का मतलब ये शरीर है, और पांच पांडव कोई पांडव हुए नहीं थे, पांच पांडव तो ये हमारी पांच इंद्रियां हैं। तो अगर तो तुम्हें ज्यादा अच्छा पता है व्यासदेव से कि कौन क्या था, व्यासदेव जी को बुद्धि नहीं थी बताने की कि कुरुक्षेत्र मतलब शरीर, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो कोई पूर्ववर्ती आचार्य उसको ऐसे एक्सप्लेन किए हैं। तो ये दिखाता है धूर्त के लक्षण, ये गुरु नहीं है ये धूर्त के लक्षण है, जो शास्त्रों को तोड़े मरोड़े अपने हिसाब से तोड़े मरोड़े। एक भ्रांत धारणा क्या है, ये तो अपने अपने मानने की बात है, ये तो अपने अपने अर्थ लगाने की बात है। आप कोई इसको पढ़ करके ये अर्थ लगाता है, कोई इसको पढ़ करके वो अर्थ लगाता है, तो ये अर्थ लगाने की बात नहीं है। जो डायरेक्ट मीनिंग है वो समझिए, ये न्याय का नियम है। अगर किसी चीज का डायरेक्ट मीनिंग स्पष्ट है तो फिर उसका दूसरा मतलब लगाने की जरूरत क्या है। अगर कोई एक वाक्य है कि ये गांव नदी में है, नदी पर है, ये गांव नदी पर है, तो अभी इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो ना, ये गांव नदी पर है इसका मतलब कुछ नाव गांव कैसे नदी पर हो सकता है, तो इसलिए जरूरत पड़ती है इसको दूसरा मतलब निकालने की। इसका मतलब ये है कि ये गांव नदी के तट पर है, जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर नहीं है तब उसका इनडायरेक्ट मीनिंग लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर है तो फिर डायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से जहां जहां पर डायरेक्ट मीनिंग क्लियर है तो आप उसका क्यों इनडायरेक्ट मीनिंग ले रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं यहां पर भगवद गीता में कि कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ, आज भी कुरुक्षेत्र है और पहले भी था, महाभारत के युद्ध से क्या और शास्त्रों में वर्णन है, महाभारत के युद्ध से पहले भी वर्णन है शास्त्रों में कुरुक्षेत्र का, देवताओं के लिए पूजनीय स्थान था। तो कुरुक्षेत्र कोई नई चीज नहीं है, पहले से था, तो फिर क्यों आप इसमें अपना इंटरप्रिटेशन लगा रहे कि कुरुक्षेत्र कोई, ऐसा नहीं कि युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र था, ये तो हमारा शरीर है, क्यों आप उसको इनडायरेक्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं हा? तो इसलिए ये वही लोग करते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, जो अपने मन से शास्त्रों को समझना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए विनम्रता से अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में हमें शरण लेनी होगी, गुरु को पहचानना होगा इन लक्षणों के द्वारा, और तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, उनकी शरण में जाना होगा जो भगवान का सच्चा प्रतिनिधि है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो आया है, और उसका एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो भगवान की सेवा में 100% एंगेज होना चाहिए, तभी वो गुरु बनने लायक है। क्योंकि हम उससे क्या सीखने जा रहे हैं, भगवान की शुद्ध सेवा, तो वो खुद भी तो सेवक होना चाहिए। केवल थ्योरेटिकली पढ़ लिया, जानकारी ले ली, सब श्लोक याद है भगवदगीता के, लेकिन किस लिए भगवदगीता का पारायण कर रहे हैं, किस लिए भागवत सप्ताह कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, अच्छा धंधा है, बहुत लोग पैसा देते हैं खूब, तो अच्छा धंधा है, पैसा कमाओ खूब। तो जो व्यक्ति भगवान की जानकारी को पैसा का धंधा करने के लिए करता है वो गुरु नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए भगवान का संदेश दे रहा है वो व्यक्ति गुरु बन रहा है। यानी जो व्यक्ति 100% जिसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित है बिना किसी अन्य हेतु के, वो गुरु का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर और लक्षण है कि उसको शास्त्र में पारंगत होना चाहिए, अर्थात शास्त्र के अनुसार उसको बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे गुरु की शरण में जाकर के विनम्रता से उनसे पूछ करके, उनसे सुन करके, और जहां कंफ्यूजन हो उनसे पूछ करके, परिप्रश्नेना और सेवया, उनकी सेवा करके हम उनके माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं गुरुजी बना लिए किस लिए, दीवार पे टांगने के लिए, उसके बाद ना कभी गुरु से मिलते हैं ना कुछ पूछते हैं ना सुनते हैं, बस सुबह उठ करके दिया करते हैं, आरती करते हैं, गुरुजी बस वहां उपस्थित हैं दीवार पर, कुछ सुनना नहीं है, फैशन। हमारे भी गुरु हैं, तो गुरु को इस तरह से फैशन की तरह से नहीं, गुरु मतलब जिनसे हम सुने भगवान के विषय में, और गुरु का मतलब जो भगवान के विषय में बताए। गुरु मतलब नहीं जो आपको बताए कि कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे जॉब लेना है, कैसे आप बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वो गुरु का काम नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु का वो काम नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का काम केवल एक है, आपको भगवान का रास्ता दिखाना, वही गुरु है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करने से, उनकी सेवा करने से वो हमें गुरु के पास ले आता है। तो पहले भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलेंगे जब हम सिंसियर होंगे, और फिर गुरु की कृपा से हमको भगवान मिलेंगे। तो ये है भगवान को समझने का तरीका। तो शास्त्रों में इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से निचोड़ है कि भगवान कौन है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में देखिए, अब हम बोल रहे हैं तो हम उसका प्रमाण दे रहे हैं कि कौन से शास्त्र में बताया गया। हम नहीं बोल रहे हैं कि इस कौन वाले सोचते हैं कि भगवान ये है, ये कोई हमारा विचार नहीं है, ये शास्त्रों का विचार है, ये गुरु शिष्य परंपरा का विचार है, चारों संप्रदाय का विचार है, रामानुजाचार्य का विचार है, महान महान सब आचार्य जो वैदिक संस्कृति की धरोहर जो रहे हैं उनका विचार, सबका एकमत विचार है। वो असित देवल व्यास सबीरी व्यास देव जी भगवदगीता में क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है क्यों, शास्त्रों के अनुसार निर्दिष्ट है कि वो भगवान है, सभी महान महान आचार्य उनको स्वीकार किए भगवान है, इसलिए भगवान है। और भगवान स्वयं उद्घोषणा करते हैं भगवदगीता में कि वो आदि हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान बोलते हैं मैं ही शरण में आई, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर और कोई नहीं। गुजरात में बहुत एक कॉमन चीज है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान से ऊपर भी एक व्यक्ति है, कृष्ण से ऊपर भी एक है, और उसका धाम कृष्ण से ऊपर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं जो भी है, अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि गोलोक से ऊपर भी एक धाम है और कृष्ण से ऊपर भी कोई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं भगवद्गीता में, मत्ता परतरम न अन्यत, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो या तो कृष्ण को पता नहीं था, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो कृष्ण से, कृष्ण को पता नहीं लगा, व्यासदेव जी को पता नहीं लगा, महान आचार्य को पता नहीं लगा, हजार हजार साल से चले आ रहे हैं, आपको पता लग गया कि उनसे ऊपर कोई है। तो इस प्रकार से कूट बुद्धि से कभी हम भगवद्गीता को, भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो सभी शास्त्रों का निचोड़ है, अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट सुन रहा है, भगवद्गीता सुनने के बाद अर्जुन किस निष्कर्ष पर पहुंचा, अर्जुन का क्या मंतव्य है। अर्जुन बोल रहा है परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवाम, कि आप परम ब्रह्म है, हम सब भी ब्रह्म है, हम सब भी आत्मा है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान परम आदि देवम अजम विभूम, नित्य शाश्वत, आप शाश्वत हैं, आदि पुरुष हैं, अजम जिनका कभी जन्म नहीं होता है, आप ऐसे हैं। और कोई बोले ठीक है अर्जुन तो बोल रहा है क्योंकि फ्रेंड है, बटरिंग कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, असित देवल व्यासा, असित देवल व्यास, ये सभी ऋषि भी यही बोल रहे हैं और अभी आप खुद भी यही बोल रहे हैं, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि आप भगवान हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान को जानते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जब खुद अवतरित हुए 5000 वर्ष पूर्व, अपनी क्रियाओं से उन्होंने दिखाया कि वो भगवान है। केवल वोट से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, 1000 लोग मिलकर के किसी आदमी को घोषित कर दे भगवान है तो कोई भगवान नहीं बन सकता, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज गॉड, दैट मीन्स उसको दिखाना पड़ेगा कि वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, क्योंकि भगवान मतलब सुप्रीम, तो हर चीज में सुप्रीम होने चाहिए। तो सब चीजों को 6 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। क्या है वो 6 चीजें? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश्रिय ज्ञान वैराग्यम चैव भग इति गणा। तो 6 चीजें हैं, एक है ऐश्वर्य यानी कि धन संपत्ति, दूसरा है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश्रिय, वीर्य पावर शक्ति, यश ख्याति, श्रेय सुंदरता, ज्ञान वैराग्य च एव, ज्ञान नॉलेज और वैराग्य, वैराग्य अनासक्ति, ये 6 जो हैं वो हर संपत्ति को, हर ओपुलेंस को हम इन 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जितनी भी ओपुलेंस है उनको 6 भाग में बांट सकते हैं। तो जो व्यक्ति इन 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण है एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर एक ही व्यक्ति के अंदर ये सब के सब ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में जहां उपलब्ध हो, उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। भग मतलब ये सब ऐश्वर्य, वान मतलब धारण करने वाला, जिस व्यक्ति के अंदर ये सब ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हो उसे कहते हैं भगवान। भगवान वोट से नहीं बन सकता, मेरे मानने से नहीं बन सकता, उसको प्रूव, ही हैज टू सी, वी हैव टू सी क्या वास्तव में वो इनको धारण करने वाला। तो बहुत ही जगत में कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत बहुत अमीर हो, लेकिन क्या जरूरी है वो सुंदर भी, सबसे सुंदर भी हो? क्या वो जरूरी है सबसे बुद्धिमान भी हो? क्या वो जरूरी है सबसे वैरागी भी हो? नहीं, किसी के अंदर कोई गुण है किसी में कोई नहीं है, लेकिन भगवान मतलब एट वन टाइम सभी के सभी गुण उपलब्ध है। और ऐसा नहीं कोई बोल रहा है जैसे बिल गेट्स है, बहुत अमीर है, उसका बहुत पैसा है, लेकिन क्या बिल गेट्स क्लेम कर सकता है कि सब पैसा उसका है? ऐसा क्लेम नहीं कर सकता ना? लेकिन भगवान वो है सब कुछ जिसका है, पूर्ण ऐश्वर्य कंप्लीट 100%, वो भगवान श्री कृष्ण डिक्लेयर करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोक का महेश्वर हूं, डिक्लेयर करते हैं और प्रूव करते हैं जब यहां आते हैं 5000 वर्ष को। जैसे ये ज्ञान है, भगवान ने ये ज्ञान दिया भगवद्गीता, इसके सामने है कोई और व्यक्ति का दिया हुआ ज्ञान? शास्त्रों के ज्ञान के आगे कहीं और है किसी और का ज्ञान? ये प्रूव करता है कि कृष्ण, ये भगवान भगवद्गीता ज्ञान, पूरे संसार में इससे बढ़कर और ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं मानी जाती आज भी, और कभी भी नहीं मानी जाएगी। जो ज्ञान इसमें है वो कहीं नहीं किसी भी। तो आप अपने को भगवान बोलते हो तो पहले आप कुछ ऐसा ज्ञान दो जो कहीं इसके नजदीक भी हो। तो इस प्रकार से हमें वैज्ञानिक दृष्टि से समझना है भगवान को, तो हम समझेंगे कि कौन भगवान है। तो आदि हैं श्री कृष्ण और विष्णु तत्व, ये सब विष्णु तत्व के अंतर आते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण, राम, नृसिंह, वराह, ये सब विष्णु तत्व हैं, नारायण, ये सब एक ही व्यक्ति हैं अलग अलग रूप में। लेकिन देवी देवता हैं आप और हम जैसे जीव, लेकिन पावरफुल, जिनको भगवान के द्वारा इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। सूर्य, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, वो सब जीव हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है इस भौतिक जगत को नियंत्रण करने वाली। आध्यात्मिक जगत का नियंत्रण होता है भगवान की अंतरंग शक्ति से, राधा रानी भाई, इस भौतिक जगत का संचालन होता है दुर्गा जी। और भगवान और जो शिव जी हैं वो कौन है? वो जीव भी नहीं है, जीव से ऊपर है, लेकिन विष्णु तत्व भी नहीं है, बीच की स्थिति है। भगवान का ही विस्तार है, लेकिन वो भगवान का विस्तार है जो इस भौतिक जगत के संपर्क में रहते हैं, इस भौतिक जगत के विषय में संचालन करते हैं, तो वो शिव जी हैं। इस प्रकार से ये विस्तृत विषय आने वाले दिनों में हम लोग समझेंगे। तो शास्त्र के अनुसार एक मत है कि कृष्ण एकल ईश्वर, कृष्ण आर सब भृत्य, एक ईश्वर है कृष्ण और सब सेवक है। तो इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्णा। अब इस विषय में कोई शंका किसी को है, कोई टिप्पणी, कुछ आपने कुछ और सुना हो कहीं? ओके, एक एक करके आप पहले कुछ पूछना चाहते थे ना, पहले से, इससे पहले उनको चांस देंगे। तो भगवान जैसे कोई आदमी जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर जो भी संचालन होता है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। तो क्या कैदी, कोई कैदी बोले सब कुछ तो गवर्नमेंट ही करती है ना, तो मैं जेल के अंदर आया वो भी गवर्नमेंट की वजह से, जेल के बाहर जाऊंगा तो भी गवर्नमेंट की वजह से, जाओगे गवर्नमेंट की वजह से, लेकिन आप जैसा कार्य करोगे उसके अनुसार। लेकिन लेकिन बुद्धि दी है, लेकिन किस आधार पर? आपकी इच्छा के अनुसार। उसी का संचालित, बुद्धि उसने दी है,
सोचने समझने की शक्ति को उसी के अधिकार है। हाँ, कैसे मतलब मनुष्य अलग हटके और इस बात को सोच सकता है?
सोचने समझने की शक्ति जो उसकी बुद्धि है, वो भगवान उसको नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उसके किस आधार पर कर रहे हैं वो समझ जरूरी है। आत्मा का अपना एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए आत्मा के अंदर भगवान के सभी गुण हैं। आत्मा भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, इसलिए उसकी भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन सीमित है, छोटी है। तो भगवान की भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो असीमित है, वही गुण हमें भी। तो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, वही स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मतलब है। स्वतंत्रता का मतलब उसका सदुपयोग हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आत्मा के अंदर ये शक्ति है कि वो भगवान की सेवा करने की इच्छा कर सकता है या भगवान की सेवा न करने की इच्छा कर सकता है। ये जीव का कार्य है, ये नहीं, ये जीव का संवैधानिक गुण है, ये जीवन का लक्षण है, ये जीव की कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है। क्योंकि जीव, आत्मा जीवित है, भगवान का अंश है, ये उसका संवैधानिक गुण है। तो इस वजह से उसके अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लिमिटेड, इसीलिए वो इच्छा करना उसका कार्य है, लेकिन इच्छा के अनुसार, इच्छा को पूरा करना उसका हाथ में नहीं है। उसको पूरा करने के लिए भगवान की सैंक्शन चाहिए, उनकी द्वारा फैसिलिटी चाहिए, तब कर सकता है। तो जब व्यक्ति, जब हम स्वाभाविक, हमारा संवैधानिक गुण तो है कि हम अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में नियोजित करें, तब हम सुखी होंगे, क्योंकि वो हमारा स्वभाव के अनुसार है, क्योंकि हम दास हैं। लेकिन हम जब इसका दुरुपयोग करके ऐसी इच्छा करते हैं कि मैं क्यों भगवान की सेवा करूं, मैं खुद क्यों ना भगवान बन जाऊं, तब भगवान हमें समझाते हैं, बताते हैं कि ये आपके हित में नहीं है, दिस इज नॉट गुड। लेकिन यदि हम जिद करें कि नहीं 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 हमें तो स्वतंत्र ही रहना है, जैसे कई बार बच्चा, पिताजी का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, खुश हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन बच्चा कहता है नहीं पिताजी मुझे तो आपसे अलग जाना है, तो ये उसकी स्वतंत्रता है। पिताजी समझाते हैं, बेटे ऐसे क्यों जा रहे हो, अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चा जिद पड़ा हुआ है, ठीक है तो तुम जाओ, लेकिन अभी उसको बिजनेस करने का पैसा ही वो ही देते हैं क्योंकि उसका तो कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से भगवान सब फैसले दे दे रहे हैं लेकिन इच्छा हम कर रहे हैं। यहां आने की इच्छा हमने की, भगवान से अलग होने की इच्छा हमने की। जैसे ही हम वो इच्छा करते हैं तुरंत भगवान की माया शक्ति के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि वो माया के अंडर में ही संभव है। गलत इच्छा को समझना होना कि ये संभव है, ये माया शक्ति के अंडर में पॉसिबल है। इसलिए कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीव भगवान को भूलता है तुरंत माया झपट लेती है। जैसे ही हम नियम का उल्लंघन करते हैं तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट कैदी बन जाते हैं, तुरंत बिचारे। तो इसलिए हम अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में फंसे, लेकिन एक बार फंस गए हैं अभी अपनी इच्छा से निकल नहीं सकते हैं। इच्छा करेंगे उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जब भगवान संतुष्ट होंगे अभी रियली तुम चाहते हो तब वो हमको मुक्त करेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं दैवी एष गुणमयी मम माया कृत्या, ये मेरी जो माया शक्ति है गुणों की बनी हुई इसको लान पाना असंभव है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनको माया से मुक्त करता हूं। समुद्र में आप छलांग लगा गए वो आपकी इच्छा से लगाए, लेकिन छलांग लगाने के बाद में अभी आप लहरों के अनुसार ऊपर नीचे जाएंगे, अभी आप तुरंत सोचे ठीक है मैं बाहर आया था तो उठ के एकदम से बाहर नहीं आ जाएंगे। अभी आपको उसके नियम के अनुसार बंध गए आप, तो अभी कैसे बाहर आएंगे? भगवान की कान पकड़िए पहले, सॉरी सॉरी तैयार होइए, अभी दोबारा गलती नहीं करेंगे, तब भगवान आपको बाहर निकाल। यस आप हरे कृष्ण। हाउ वॉज गॉड क्रिएटेड हिमसेल्फ? गॉड डजेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस, ही इज अनादि, वो शाश्वत है। आत्मा भी शाश्वत है, आत्मा कभी कभी जन्म नहीं होता, आत्मा भी शाश्वत है। ये आध्यात्मिक चीज का लक्षण है। वास्तव में भौतिक शक्ति का भी वो भी नित्य है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, वो भी नित्य है। रॉ मटेरियल सब नित्य है, जैसे भी ये बिल्डिंग है टूट जाएगी तो वापिस, ये शरीर है पंचभूत का बना है, जल जाएगा फिर वापिस मिल जाएगा, लेकिन वो तत्व तो रहेंगे। तो ये भौतिक का रूप बदलता है लेकिन वो शक्ति भी नित्य है, शक्तिवान भी नित्य है, लेकिन इस शक्ति का भौतिक शक्ति के रूप बदलते रहते हैं। यस
आज हम गुरु शिष्य के रूप में रहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी को अपनी सेवा भक्ति से ये कभी अनुभव हुआ तो यस भगवान है
हमारे, मतलब मुझको? ओ भगवान की अनुभूति के अलग अलग स्तर है, हर व्यक्ति को अनुभव हो रहा है भगवान का, इसके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है।
आपको कैसे फील हुआ, मतलब आपको कैसे अनुभव?
देखिए भगवान की अनुभूति जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, भगवान बोलते हैं रसोम अपसु कौनते, जब आप पानी का स्वाद चखो तो जो स्वाद है वो मैं हूं, सूरज को देखो सूरज का प्रकाश मैं हूं। अर्थात पहले भगवान की अनुभूति होती है भगवान की शक्तियों के माध्यम से। पहले सूरज आकाश में आता है, सूरज आता नहीं, सूरज नहीं दिखता है, पहले सूरज का प्रकाश आता है, तो सूरज का प्रकाश आते हैं उनको बताता है कि भगवान और सूरज आ गए। तो ऐसे ही पहले भगवान की अनुभूति होती है उनकी शक्ति के अनुभूति से। तो वो शक्ति तो आप और हम हर क्षण अनुभव कर रहे हैं भगवान की शक्ति को। ये पूरा संचालन कैसे हो रहा है, ये शरीर कैसे चल रहा है, हर क्षण हर जगह तो भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। तो उस शक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति भगवान के साथ है, भगवान का अनुभव कर रहा है। हाँ भगवान को पर्सनली अनुभव करने के लिए, उनको शक्तिमान उस पर्सनैलिटी को अनुभव करने के लिए, उसके लिए आपको उनकी उनका भक्त होना होगा, उनकी शरणागत जाना होगा। हाँ तब धीरे आप जाएंगे। तो हम जो भक्त हैं अभी हम भगवान की सेवा में रत हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, शुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारी इस आयु में या किसी भी आयु में बहुत बहुत ही जगत में भोग करने के लिए बहुत सामग्री है, और भौतिक दृष्टि से कुछ ऐसा भी नहीं था कि हमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ कमी था। डिग्रीज वो MBBS वो सब भी किया है, इसलिए ऐसा नहीं था कि कुछ। कई बार लोग सोचते हैं जो लोग फर्स्ट, जो लोग भौतिक जगत में कुछ नहीं कर पाते वो लोग आध्यात्मिक में आए थे, तो ऐसा भी नहीं था। तो लेकिन हम भगवान की सेवा में रत हैं, दिन रात वही कार्य है हमारा और कोई कार्य नहीं है। उससे हमें ऐसा नहीं कुछ पैसा मिलता हो, कोई सैलरी मिलती है, कि कुछ भौतिक सुख प्राप्त होते हों। तो हमें क्या चीज़ है जो प्रेरणा दे रही है कि हम सालों सालों से किए जा रहे हैं? हर व्यक्ति को कोई मोटिवेशन चाहिए ना। सब व्यक्ति कोई कार्य करते हैं तो उनको मोटिवेशन होता है कि इससे पैसा मिलेगा, हम ये एंजॉय करेंगे। तो ये सब हम कार्य कर रहे हैं, यदि इस सब को करने से हमें कोई अनुभूति नहीं हो रही है, भगवान का रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, भगवान की सेवा में हमको आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर ये सब कार्य हमारे लिए कर पाना असंभव था। कोई व्यक्ति एक दिन कर सकता, दो दिन कर सकता है, सालों साल क्यों करेगा। तो ये अनुभूति है कि भगवान हमें अपनी सेवा का आनंद दे रहे हैं, ये भगवान की पर्सनैलिटी की अनुभूति है। ऑफ कोर्स भगवान और भगवान को साक्षात देखना, तो मंदिर में जो भगवान के अर्चक विग्रह हैं वो भगवान साक्षात हैं, भले ही हमें वो इस समय पत्थर दिख रहे हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान अपनी कृपा से उसमें आते हैं और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस दृष्टि से हम साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन रियलाइजेशन पूरा होगा वो सिद्ध अवस्था की स्थिति है। सिद्ध अवस्था में आप भगवान से बात करेंगे, भगवान के साथ खेलेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, लेकिन समय आने पर। और अच्छा एक मिनट, अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम ये कुछ एक दो प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, यदि आप लोग कहें, नहीं तो फिर हम आगे नहीं जाएं। किसी को आपत्ति है, क्या हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं? ओके। हाँ, जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं तो कैसे सेवा करेंगे? कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो करो, तो भगवान की सेवा मतलब भगवान जो कह रहे हैं वो करो, उनको प्रसन्न करो, भगवान जो कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं वो भगवद गीता में बताया गया, तो आप वो करिए। तो पहले तो भगवान आपको जो कह रहे हैं उसके भी अलग अलग स्तर होंगे। पहले तो अगर हम नालायक हैं तो बोलेंगे पहले नालायक नहीं, पहले तुम लायक बनो, और फिर जब लायक बनोगे तो अपने हृदय की इच्छा बताएंगे, तब फिर और गहरा संबंध बनेगा। तो ऐसे भगवान की सेवा के 5 स्तर हैं, शांतरस, दास्यरस, सखा, साख्य, फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य। तो शांतरस मतलब सबसे पहले केवल अप्रिशिएट करना कि भगवान महान है, ये प्रथम स्तर है भगवान की सेवा का। दूसरा स्तर है भगवान महान है और मैं उनका सेवक हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो एज ए मीनियल सर्वेंट, दास के रूप में उनकी सेवा करना, उनके वपु सेवा करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, उनको भोग, भगवान को भोग अर्पित करना, भगवान का श्रृंगार करना, ये सब सेवा। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा की, वो उदाहरण है दास्य का। फिर उससे और थोड़ा इंटीमेट आगे गए तो मित्रता के रूप में भगवान की सेवा करना, इसका उदाहरण है अर्जुन, भगवान के मित्र बनना, भगवान का मित्र बनना भगवान को और प्रसन्न करता है, उनके मात्र सेवक के रूप में सेवा करने से भी अधिक भगवान के मित्र रूप में उनकी सेवा करना भगवान को और प्रसन्न करता है। फिर और आगे वात्सल्य, यशोदा, नंद बाबा, वात्सल्य में कि अभी तो भगवान की हम भगवान को अपना बच्चा मान करके उनका ध्यान रखते हैं, तो उसमें तो और अधिक ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम भगवान को अपना स्वामी मानते हैं तो मांगते हैं भगवान ये दो ये दो ये दो, लेकिन जब भगवान को अपना बच्चा मानते हैं तो हमें उसके पूरी तरह सेवा करनी पड़ती है, हमेशा उसके केयर में रहना पड़ता है। वात्सल्य और भी उसके आगे माधुर्य, पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, वो अंतिम स्तर है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा होती है, लेकिन हमारे स्तर पर प्राइमरी भगवान के आदेश का पालन करना, यानी सबसे पहले भगवान को समझना, वो भगवान की सेवा का प्रारंभ है, भगवान को समझना। तो भगवान की सेवा का प्रारंभ होता है, भगवान को समझने का प्रारंभ होता है जीवा से, जीवा से, जीवा से। कैसे? जीवा के दो काम है, भगवान का बोलना और स्वाद लेना। तो हम केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें जीवा से, और इस जीवा का उपयोग केवल कृष्ण के बारे में बोलने से बोलें, तो यहाँ से भगवान की सेवा प्रारंभ होती है। कानों से सुने भगवान के विषय में, और सुनने के बाद दूसरों को बताएं और भगवान का नाम उच्चारित करें, ये सेवा का प्रारंभ है। इससे करके आगे आ जाएंगे, धीरे धीरे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। यहाँ भगवान का मंदिर है, भगवान विराजमान है, मंदिर की सफाई कीजिए, आप आ रहे हैं तो भगवान के लिए कुछ लेके आइए, कुछ फल, कुछ पुष्प लेके आइए। भगवान को आपके पुष्प की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचिए मैं फूल फल लेके नहीं आऊंगा भगवान भूखे मरेंगे, वो हमारे लिए ये कह रहे हैं। एक पिता को बच्चा एक गिफ्ट देता है, पिताजी का बर्थडे है, पिता से ही पैसा लेकर के पिता को गिफ्ट देता है, तो पिता इससे खुश होते हैं क्योंकि वो उसकी उसकी पीछे छिपी प्रेम भावना को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते हैं क्योंकि सभी कुछ तो भगवान का है, लेकिन वो जिस प्रेम भावना से हम भगवान को वो चीज दे रहे हैं उससे हमारी अभिव्यक्ति, और वो भगवान को प्रिय है। और कोई प्रश्न? विवाह क्यों होता है? विवाह एक संस्कार है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए अनेक विशेष रूप से 10 प्रकार के संस्कार मनुष्य जीवन में बताए गए हैं, जिससे धीरे धीरे वो सुधरता है, संस्कार लेता है, भगवान की तरफ चढ़ता है। जैसे गर्भदान संस्कार पहला है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते हैं, फिर उसके बाद जन्म के समय के संस्कार होते हैं, ऐसे आगे चलते हैं तो फिर विवाह संस्कार होता है, जिसमें पति पत्नी साथ में रहें लेकिन भगवान की सेवा के लिए प्रयास करें इस उद्देश्य से, और संतान जिनको वो भक्त बना सकें, ऐसी संतान उत्पन्न करें और उनको ट्रेनिंग दें, ये हेतु के लिए विवाह धर्म विवाह संस्कार है। ओके, अभी हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे।